SBS हिंदी।
आपका समुदाय, आपकी बातें, SBS हिंदी।
वैसे तो हम लोग ये मानते हैं कि शादियों के जोड़े स्वर्ग में बनाए जाते हैं और धरती पर सिर्फ उनका मिलन होता है, लेकिन सभी शादियों का अंत खुशहाल नहीं होता है। अक्सर लड़कियों की शादी सात समंदर पार NRI लड़के से कर दी जाती है। उस वक्त ध्यान में यही रहता है कि लड़का NRI है, अच्छा पैसा है, स्टेटस है, गाड़ी, घर, लेकिन अक्सर होता इसका उल्टा है। बहुत से मामलों में NRI लड़के अपनी पत्नियों को धोखा देकर वापस चले जाते हैं और फिर कभी नहीं लौटते हैं। भारत में ऐसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। NRI लड़का या तो पहले से शादीशुदा निकलता है या फिर वो लौटता ही नहीं। अक्सर ऐसी शादियां दहेज की मांग और फिर आखिरकार टूट जाती हैं। रह जाती है तो सिर्फ लड़की, जिसने बहुत ख्वाब देखे होते हैं अपनी शादी, अपने पति और एक नई दुनिया के। NRI से शादी अगर लुभावनी लगती है, लेकिन असलियत में ये एक जुए की तरह होती है और दांव पर होती है सिर्फ लड़की की जिंदगी। नवजोत कौर चंडीगढ़ की रहने वाली एक आम लड़की हैं। उन्होंने भी ऐसे ही ख्वाब देखे थे अपनी शादी के, लेकिन 2 साल में उनके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। शादी हुई, दहेज के लिए झगड़े और फिर एक दिन NRI लड़का और उसका परिवार कनाडा चला गया। फिर कोई संपर्क नहीं और मांगने पर मिला डाइवोर्स। नवजोत लेकिन बहादुर निकली और लड़ गईं, लेकिन इस लड़ाई में आज भी उनका समय कोर्ट के चक्कर लगाते बीतता है। अपनी कहानी नवजोत खुद बताती हैं।
ये सब चीजें सर, मैंने जब मेरी शादी हुई 15 अप्रैल 2017 को, तो मैंने तब से ही फेस करना शुरू कर दिया था वहां पे, क्योंकि शादी के दूसरे या तीसरे दिन से ही उन्होंने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि ये आप शादी में ये अच्छा नहीं था, शादी में वो अच्छा नहीं था, हमारे तो 200 बंदे रह गए शादी में आने के लिए, जबकि उनका तो ऑलरेडी उनकी तरफ से 1000 गेस्ट आए थे उनकी तरफ से। फिर तो उसके बाद में उन्होंने मुझे इसलिए तो आपसे कहना शुरू कर दिया कि ये जो ज्वेलरी है ये अच्छी नहीं है, ये चीजें अच्छी नहीं है, तुम्हारे फादर ने अरेंजमेंट अच्छा नहीं किया, हमारे गेस्ट की सेवा नहीं हुई, ये सब चीजें हो गई। और देन उनका ये भी था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उन दिनों में अल्कोहल बैन हो गई थी कि जो नेशनल हाईवेज के पर मैरिज पैलेसेज हैं वहां पर अल्कोहल सर्विंग नहीं होगी, लेकिन इस चीज के लिए भी हमें ब्लेम किया गया कि आपने अल्कोहल नहीं सर्व की गई। तो वहां से दूर जाकर भी हमें एक डिस्टेंस पर उनके गेस्ट ने वहां से हमसे ड्रिंक ली और वहां पर सर्विंग हुई उनको, फिर भी लेकिन स्टिल उस चीज को मुझे फेस करना पड़ा वहां पे। मेरे साथ इतनी हरासमेंट मेरी वहां पे हुई है मेंटली फिजिकली कि मतलब इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस राइट नाउ। आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम कि मेरे पर एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए उन्होंने ये, और मुझे ये धमकी वैसे बड़े आराम से दे दी जाती थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो डाइवोर्स मिल जाएगा। मेरे से एक फॉर्च्यूनर व्हीकल की भी मांग की गई वहां पे। तो ये सब चीजें ऐसे चलती रहती थी, लेकिन आई वॉज वेरी अपसेट और मेरे पेरेंट्स ने काफी पैसा स्पेंड किया था, तो मुझे लगता था कि चलो शायद ये थोड़ा ठीक हो जाएंगे, किसी का बिहेवियर चेंज हो जाएगा मेरे लिए, किसी एक मेंबर का भी अगर चेंज हो जाएगा घर में बिहेवियर तो लगता है कि कोई होप बन जाती है। लेकिन ऑल ऑफ सडन ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया एक दिन, दे लिटरली बीट मी अप एंड फिर मैं अपने पेरेंट्स के घर पे आ गई। लेकिन उसके बाद भी हमने कॉन्टेक्ट किया उनसे, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी भी ट्राई नहीं किया कि हमसे कोई बात करे। और जो लड़का तो पहले चला गया और लड़के के जो फादर थे वो भी हमें बिना बताए कनाडा चले गए, और जब वो वहां पर पहुंचे हमें तब पता चला कि तो वो कनाडा चले गए और यहाँ पर इनके घर में और कोई नहीं था उनकी फैमिली से। तो ये सब चीजें ऐसे होती कि उसके बाद में उन्होंने ये बोला, जैसे ही लड़का पहुंचा वहां पे उसने बोला कि मुझे तीसरे चौथे दिन ही बोलता मुझे कि मुझे तुझसे डाइवोर्स चाहिए। एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड कि ऑल ऑफ सडन कि ऐसे डाइवोर्स का डिसीजन कैसे हो गया। जो आपकी कंप्लेंट्स हैं, जो आपकी डिमांड्स हैं, वो आप एक बार बैठ कर डिस्कस करो मेरे पेरेंट्स से, किसी से बात तो करो, आपने पहले से ही डिक्लेयर कर दिया कि आपको डाइवोर्स चाहिए। तो ये सब ऐसे ही चलता रहा। फाइनली जब किसी ने मेरी बात ही सुनी, हम लोगों ने काफी ट्राई किया उनसे बात करने का, तो फिर हमने दिसंबर में कंप्लेंट फाइल कर दी मैंने एक 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 पुलिस स्टेशन में जलंधर में की, और उससे पहले मैंने NRI जो है पुलिस स्टेशन उनसे भी बात करके एक कंप्लेंट वहां पे भी दी थी। मेरा फिर FIR लॉज हो गई थी फरवरी में. राइट नाउ मैं प्रोसीडिंग्स में ही हूँ अभी. रोज कभी हाई कोर्ट में कभी लोअर कोर्ट में जाना रहता है. बट उनका ये है कि वो अभी भी मेरे कैरेक्टर पर, अभी जब किसी ने किसी को छोड़ना होता है खास करके लड़कियों को, तो उनके पास एक ही चीज बचती है, लड़की का कैरेक्टर, कि इस पे एलिगेशन लगा दो. तो अभी मेरे सिर्फ कैरेक्टर पर एलिगेशन लग रहे हैं. और बहुत बहुत हमने बहुत कॉल किए, लड़के ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया हर जगह से. तो मेरे फादर ने हर बार उनके वहां कॉल करनी, उसकी सिस्टर को, उसके फादर से बात करने के लिए, सबके लिए. तो लेकिन ऐसा होता था कि वो कभी कभी तो कॉल ही नहीं पिक करते थे, और कभी आंसर ही नहीं करते थे ठीक से, और बोल देते थे कि जब आएंगे तब बात करेंगे, जब आएंगे तब बात करेंगे. लेकिन वो जब आए यहाँ पे, तब भी हमने उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने बोला कि हमने तो नहीं रखनी, हमारे घर में भी ना आए, तो हमें बस तलाक चाहिए. तो उस दिन बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे. और फिर मैंने फाइनली यहाँ जलंधर SSP के ऑफिस में जाकर अपनी एप्लीकेशन दी कि मेरी हेल्प कीजिए, ये सब मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं जी. जो अब तक मैंने रियलाइज किया है, जो पंजाबी पेरेंट्स या इंडियन पेरेंट्स हैं, उनको बड़े बच्चे की शादी की बहुत जल्दी होती है. जो जो अभी तक मैंने रियलाइज किया कि मैं बड़ी थी घर में, तो उन्हें ये था कि इसकी शादी करनी है. रिश्ता आया और उन्होंने ये नहीं देखा. ये जो मेरी शादी हुई वो ऐसे था कि वो हमारे रिलेटिव के बीच में से ही थे बंदे जिनसे शादी हुई. लेकिन अब क्या हुआ कि कोई जिनसे भी हम इंक्वायर कर रहे थे वो बोल रहे थे कि ठीक है ठीक है. लेकिन जो हमें फैक्ट नजर आया कि हमने रोका करके लोगों से इंक्वायरी की कि हमने रोका कर लिया. बट अगर हम लोग ये इंक्वायरी पहले से करनी शुरू कर दें, किसी को जवाब ही ना दे हाँ या ना, पहले उनके बारे में 1-1.5 महीना लगा के भी अगर हम चलें इंक्वायरी कर लें, तो शायद हमें कोई ना कोई फैक्ट पता चल जाए कि आगे वाली पार्टी कैसी है. अदरवाइज ये एक जुए की तरह है कि शादी आपकी हो गया, सक्सेसफुल हो गई तो हो गई, अदरवाइज आपकी जिंदगी खराब है. और सर ये मैं खुद फील कर रही हूँ इस टाइम पे कि मैं ना इस पार की हूँ ना उस पार की, मैं बीच में हूँ.
बात सिर्फ पंजाब तक ही सीमित नहीं है, पूरे भारत में आपको ऐसे केस मिल जाएंगे. भारत में ऐसे मामले बहुत बढ़ गए हैं. अमनजोत कौर रामूवालिया ऐसी लड़कियों के हक की लड़ाई लड़ रही हैं. उनके पिता बलवंत सिंह रामूवालिया भारत में मानव संसाधन मंत्री रह चुके हैं और इस मामले के लिए प्रशासन और सरकार तक आवाज़ उठा चुके हैं और कई कठोर नियम भी बनवा चुके हैं. अमनजोत बताती हैं कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सोचना चाहिए, कुछ छोटी छोटी सावधानियाँ आगे बहुत काम आ सकती हैं. NRI से शादी हमेशा लुभावनी नहीं होती. उसका पासपोर्ट चेक करें, कहाँ काम करता है पता करें, उसके पेपर्स की कॉपी अपने पास रखें और सब कुछ वेरीफाई करें, तभी आगे बढ़ें. इस पूरे कुचक्र के बारे में अमन ज्योत बताती हैं.
मुझे जो पंजाब से बहुत सारे केस आते हैं और हमें दिल्ली का एक केस आ ही जाता है. अगर आप लगा लें जिस 5 दिन हफ्ते के, तो देख लें अगर 20 केस, कभी 15-20 केस आते. ये भी चाहूंगी कि अब मेरे पास से कभी कभी बंगलौर से, चेन्नई से, ऐसे देश के बख बख हिस्सों से भी आते हैं. और इसमें थोड़े केस हरियाणा और हिमाचल के भी आ जाते हैं, और ज्यादा केस मेरे पास पंजाब के कुछ जिलों से है कि शादी कर ली, डाउरी के पैसे ले लिए, डाउरी और मांगी, वहाँ पैसे मंगवा लिए और फिर वापस नहीं आए और एक बच्चे को भी छोड़ गए. पर अभी ये भी होता है कि लड़की जो है वो यहाँ से PR होके जा रही है, उसके साथ चले गए और वहाँ जाके उसको छोड़. हाँ, सबसे पहले तो जब नए लड़के से शादी करते तो शादी को रजिस्टर करवाने की कोशिश की. सबसे पहले उसको बोलो कि भैया रजिस्टर करो शादी को, इसके बाद हम सेरेमनी करेंगे. और अगर हो सके तो लड़के के पहले लोग डिग्री तक भी देख लेते थे पुराने जमाने में कि भैया डिग्री दिखाओ क्योंकि पढ़े हो. तो आजकल हम कुछ नहीं देखते, जल्दी में शादी करते हैं. जल्दी में शादी ना करें, शादी जहाँ लड़के से कर रहे, जहाँ वो रह रहा उसके आस पड़ोस से पूछे. लड़के का पासपोर्ट जरूर ले लें, उसकी एक फोटो क्लिक कर लें और उसके दूसरे डॉक्यूमेंट्स की भी कर लें, ताकि कल को अगर आपत्ति हो तो ध्यान में रख के चलें. और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी के जो शादी करते हो साधारण शादी करो, दाज में कुछ ना दो, जैसे दाज की डिमांड हो चाहे शादी को एक दिन रहता हो बंद कर दो। ये हमें समाज को शर्म से बाहर आना पड़ेगा। अगर डिमांड एक रात पहले होगी शादी बंद, क्योंकि शादी ही सिंपल करो ताकि बेइज्जती भी कम हो। अब जब हम शादियों पे लाखों रुपए उधार लेके लगाएंगे और पास में कुछ है नहीं, खास करके पंजाब में ये है जो जट सिख है उनकी ज्यादा दुर्दशा है शादियों में, शादी टूटने में उनका उन्हीं के रवाज ज्यादा है, उन्हीं के साथ ठगी होती है बेटियों के साथ, क्योंकि वो अपनी जमीन का टुकड़ा बेचते हैं शादी पे लगाते हैं। और दूल्हा जो उधर से पहले से ही या तो मैरिड होता उसका कोई अता पता भी नहीं होता, तो जल्दी में करते हैं, साऊ चाचों से भी सलाह नहीं करते और आस पड़ोस से भी लड़के के नहीं पूछते। कई बार वो मौसी के यहाँ ठहर रहा होता है, कभी किराए पे रह रहा होता है, कई एजेंट पंजाब में इन्वॉल्व हैं जो शादियां करवाते हैं 2-2.5 लाख 5 लाख तक रुपया लेते हैं कि NRI लड़का ढूंढ देंगे लड़की ढूंढ देंगे और लोग देते भी हैं। और उसके बाद जब मैं कह रही थी कि शादी का जमीन का टुकड़ा बेचते हैं, उसको अपनी शादी को बहुत इंजॉयबल बना के उसके भी ज्वेलरी पैसे कैश गाड़ी के पैसे ले लिए, गाड़ी ले ली, वो लेके भाग जाते हैं। और पंजाबी शादी पे इतना ज्यादा खर्चा करते हैं जो उनकी अपने वित्त से अपनी इकोनॉमिक कंडीशन से ज्यादा होता है, अपनी वित्त से बाहर होता है। ये बहुत उल्टा रिवाज है जिसके खिलाफ हमें हमें बहुत जद्दोजहद करनी चाहिए, पंजाब सरकार को भी करनी चाहिए हमें, कि जो लड़कियां यहाँ वहां से जो लड़का आता है विदेश से वो ये सोच के आता है कि मैंने जाके हनीमून मैरिज करनी है थोड़े टाइम के लिए, शी एंड अप विद अ चाइल्ड। तो इसमें कोर्ट को भी और पार्लियामेंट को भी सख्ती से दूसरे देशों के साथ संधि करनी चाहिए कि हमारे यहाँ अगर मैरिज को तो संस्कृति सभ्यता के मुताबिक अगर कोई शादी को तोड़ता है तो उसको हम लड़के को वापस बुला सकें, ये दूसरे देशों से संधि करनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को और विदेश मंत्री को, उसके बाद जाके ये थोड़ा रुकेगा।
बात कुछ भी हो सोचिए, इसमें आपकी लड़की की जिंदगी का सवाल है। सिर्फ पैसे के पीछे न भागिए, सामाजिक बुराई दहेज से दूर रहिए, लड़की की खुशी को देखिए, बड़ों बूढ़ों की भी राय लीजिए। ज़रूरी नहीं कि NRI लड़के से शादी करके ही आपको खुशी मिलेगी। लखनऊ से फैसल फरीद।
sbs.com.au/hindi पर जाए और ऐसे अंश का आपकी भाषा में आनंद उठाए।